ओम शांति, ओम शांति। एक बार सभी मिलके बोलिए ओम शांति। अगले 3 दिनों में आप यहां से ओम शांति का मंत्र तो पक्का करके जाएंगे ही। यह स्थान है जहां पर आपको आते ही शांति के वाइब्रेशन मिले होंगे, वातावरण में एक अलग शांति का प्रभाव आपको जरूर महसूस हुआ होगा। इस वातावरण को हम अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने कार्यालयों में, हर जगह बना सकते हैं, और वो हमारे विचारों पर, हमारी बातों पर आधार रखता है। इसलिए वातावरण, वायु का आवरण, जिस वायु के अंदर हमारी बातें और हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे थॉट्स, ये दोनों ही प्रभाव डालते हैं। तो मॉर्निंग का ये सेशन जो सबसे मुख्य बेस है स्पिरिचुअलिटी का, आजकल स्पिरिचुअलिटी को बहुत लोग अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं, परोस रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लोग, क्योंकि शांति सभी को चाहिए। आंतरिक रूप से सशक्त सभी होना चाहते हैं। बाहरी दुनिया में हम बहुत सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और अनेक जो हमारी संसार की पहचान है उसको तो अभी तक हमने अचीव करना सीखा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद इंसान जब कभी अकेला बैठता है तो उसे क्या चाहिए? उसे आंतरिक बल चाहिए, उसे खुद से बात करते समय खुद के बारे में प्राउड फील होना चाहिए, खुद को वो भाग्यशाली, खुशकिस्मत अनुभव करें। ये जब तक नहीं होगा तो बाहर की जितनी भी हमारी सफलताएं हैं, जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स है, उसके होने के बावजूद हम खुश नहीं होंगे। देखा गया है दुनिया के बहुत प्रसिद्ध लोग जो बाहरी रूप से बहुत सक्सेसफुल रहे, वो भी अपने जीवन में इतने डिस्टर्ब हो गए कि कभी कभी उन्होंने खुद अपने जीवन को समाप्त कर दिया। दुनिया उन्हें सेलिब्रिटी कहती थी लेकिन वो जीना भी नहीं चाह रहे थे, उन्होंने जीवन का अंत कर दिया, क्योंकि जो बाहर मिलता है वो हमें दुनिया की वाहवाही दिलाता है। लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है आपको, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं क्या फील करती हूं, ये हमें स्पिरिचुअलिटी में सीखने को, प्राप्त करने को मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का बेस, फाउंडेशन क्या है? स्वयं की पहचान, कनेक्ट विथ योरसेल्फ। आपके मोबाइल में हजारों लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी भी आप उनसे मिलते हैं, कोई से कभी कभी चैट करते हैं, कोई से कभी कभी बात करते हैं। प्रश्न ये है कि आप खुद से कितनी बार बात करते हैं और कैसी बातें होती है, कितना अच्छा लगता है जब आप खुद से बात करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। अधिकतर लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तब खुद से बातें करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, पश्चाताप की बातें करते हैं। नहीं, राजयोग के इस पथ में हमें यही सिखाया जा रहा है कि आपका सबसे ज्यादा जीवन का समय आपको खुद के साथ बिताना है। इसलिए खुद को पहचानिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, एम्पावर कीजिए, और खुद से जब भी बात करें तो आपको दुनिया के किसी की कमी नहीं महसूस हो, इतना आप खुशी का, शक्ति का अनुभव करें। तो मैं कौन हूं, ये एक यक्ष प्रश्न है। मैं कौन हूं, आखिर मैं हूं क्या, मैं यहां क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं किस लिए यहां धरती पर आया हूं। इन प्रश्नों से हमारे मन के अंदर उत्पन्न होगी वो जिज्ञासा। इसीलिए दुनिया के सभी धर्म संप्रदाय एक बात कॉमनली कहते हैं, नो थाई सेल्फ, खुद को जानो। गुजराती में एक बहुत प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं, नरसिंह मेहता, उन्होंने बहुत अच्छा एक पद गाया था, ज्यां लगी आत्मा तत्व चिंत्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। आत्म तत्व को आपने पहचाना नहीं, विकसित नहीं किया, तब तक आपके द्वारा की हुई सारी मेहनत, पुरुषार्थ, साधना, अचीवमेंट्स व्यर्थ है। तो आज आप सभी को 3 दिन माउंट आबू के इस पवित्र वातावरण में परमात्मा ने खुद से कनेक्ट होने का मौका दिया है। ये बेस है, अगर इसको आप सीख लेंगे तो आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन के प्रति कईयों की रुचि है, परंतु हाउ कैन वी स्टार्ट, कैसे करें स्टार्ट, तो उसका आधार ही है पहले खुद को पहचानो। क्योंकि जिसे कनेक्ट होना है, जिसे कुछ एम्पावर होना है, वो है कौन? क्या इस शरीर को हमें एम्पावर करना है? बाह्य रूप से तो कोई आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो कहते हाँ भाई अब ये सशक्त हो गया है, किसी को कोई अच्छे पद मिल जाता है तो कहते अब ये थोड़ा मजबूत हो गया है, क्योंकि अच्छे पद पर बैठा है, इसका ऑर्डर चलता है। घर में भी जब आप मुखिया के रूप में डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं सशक्त हूं, मेरे घर में मैं कुछ भी जो चाहूं कर सकती हूं। परंतु क्या इसी को सशक्तिकरण कहेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं मेरी वास्तविक पहचान क्या, क्या मेरा नाम यही मेरी पहचान है? नाम कब मिला, कब मिला हमें, नाम कब मिला? जब हम संसार में आए, जन्म लिया। प्रश्न ये है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब क्या हम नहीं थे, थे या नहीं थे? तभी हम कहते हैं ना, मैं भगवान के घर से आई। कोई बच्चा आपके घर में पैदा होता आप क्या कहते हैं? भगवान के घर से आया, भगवान ने दिया। तो कहीं तो हम थे, कुछ तो थे। फिर हमारा जन्म हुआ तब हमने कहा हम एक मनुष्य है, हम इसके बच्चे हैं, ये मेरा नाम है आदि आदि। लेकिन उसके पहले भी मेरा एक्सिस्टेंस तो था ना, मैं थी, तो वो मैं क्या थी? तो नाम या मेरा मनुष्य होना इतनी मेरी पहचान नहीं है। फिर नेशनलिटी, हम कहते हमारा जन्म भारत में हुआ, हम भारतीय है, क्या इतनी ही हमारी पहचान है? क्या किसी जन्म में भारत से बाहर भी कहीं हमारा जन्म हुआ होगा? इस बार का मेरा पड़ाव भारत में है, कभी और भी कहीं हो सकता है, तो ये भी मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। इसी तरह मेरी क्वालिफिकेशन, वो भी मैंने अर्न की है, मैंने गेन की है, वो मेरी इस जन्म की है, और रहेगी कब तक? कब तक रहेगी मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे साथ टैग कब तक रहेगा? जब तक मैं जिंदा हूं, है ना? मृत्यु के बाद एक दूसरे जन्म में आत्मा प्रयाण करेगी, और अगर उसका दूसरे जन्म में वो क्लेम कर सकती है कि मैंने पिछले जन्म में पीएचडी कर रखा है, तो अभी मुझे एबीसीडी सीखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो कैपेबल माना जाए, हो सकता है उसे खुद भी याद नहीं रहेगा। तो मेरी क्वालिफिकेशन कब तक है मेरे साथ? जब तक ये शरीर है। लेकिन क्या ये शरीर छूट जाएगा? और वो तो शाश्वत सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कॉमन एजेंडा है सभी का, फिक्स प्रोग्राम है, डेट नहीं पता लेकिन प्रोग्राम तो फिक्स है ना। तो क्या उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन रहेगी? नहीं, लेकिन मैं तो रहूंगी ना, मैं तो फिर भी रहूंगी ना, वो मैं क्या हूं? इसलिए कभी मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, इसी टैग के साथ नहीं जीना है, ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। पद भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये तो आता जाता है ना, विशेषताओं के आधार पे हम कुछ बन जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, ये भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो फिर क्या कोई रिलीजन, या मैं स्त्री या पुरुष हूं, ये क्या मेरी परमानेंट आइडेंटिटी है? जरूरी नहीं है। आप इस जन्म में स्त्री है तो आपका दूसरा जन्म क्या स्त्री रूप में ही होगा? नो, कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए हम बहुत बार बहुत लोगों के अंदर देखते भी है कि उनका जन्म स्त्री रूप में हुआ है, लेकिन वो बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बहुत फेमिनाइन संस्कार कम होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एकदम से पुरुषों से भी कहीं आगे। ये क्यों होता है सोचना, क्योंकि हमारे अंदर दोनों प्रकार के संस्कार है। तो लिंग भी परमानेंट नहीं है कि मैं इसी स्त्रीलिंग में रहूंगी कि पुलिंग में रहूंगी, और धर्म भी, वो तो हम जानते ही है, किसी ने खूब गाया है सुंदर, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। ये भी टैग हमको जन्म के बाद घर के वातावरण या अन्य मान्यताओं के आधार पर मिलते हैं, लेकिन हम उससे भी अलग है। तो वो हम क्या है? इस सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे, यानी खुद को नहीं जानेंगे, तो खुद का एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? कल यहां बातें हो रही थी ना, सशक्त महिला, सशक्तिकरण महिला का हो, किसी का भी हो, लेकिन किसका? न शरीर का, न जाति का, न धर्म का, न योग्यता का, न पद का, तो किसका? तो माई सेल्फ को हमें पहचानना है। परमात्म महावाक्य है बच्चे, आप पांच तत्वों से बने, ये हड्डी मांस के पुतले नहीं हो। ये जो शरीर हमें मिला है, ये हमारा कॉस्ट्यूम है, ये हमारा एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा व्हीकल है जिसके द्वारा हम संसार की सफर कर रहे हैं। ये टेम्पररी डेस्टिनेशन है, जैसे आप कहीं होटल में गए या आप यहाँ ज्ञान सरोवर में आए हैं, तो आपको एक रूम मिला, आपको एक बेड मिला, लेकिन उस बेड को आप क्या ये कहेंगे कि ये मेरा परमानेंट बेड है? आप जानते हैं कि यहाँ मुझे कितना रहना है, 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन के लिए मुझे यहाँ रहना है, उसको आप अपना नहीं कहते हैं। वैसे ही इस संसार में, 5 तत्वों की इस दुनिया में, 5 तत्वों से बना हुआ ये हड्डी मांस का पुतला, इसको हमने अपना बेस बनाया है, इसके आधार पे हम कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये सारा इस शरीर के आधार पे हम कर रहे हैं। लेकिन कर कौन रहा है? फिर से वही प्रश्न। आप वो सब कुछ करने वाली, जिसने इस बॉडी को, इस माध्यम को लिया है, इस कॉस्ट्यूम को पहना है, वो आप आत्मा है। आत्मा जो कि एक शाश्वत शक्ति है, सनातन शक्ति है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा को किसने नहीं बनाया? आत्मा को किसने जन्म नहीं दिया? आत्मा की कभी मृत्यु हो सकती है? हो सकती है? नहीं। वो थी, वो है और वो सदा रहती है। तो मैं हम जब भी बोलते हैं, तो मैं बोलते समय यह शरीर का भान नहीं, लेकिन वो याद रहे कि मैं मस्तिष्क में विराजमान आत्मा हूं। आत्मा चेतन है, शरीर चेतन नहीं है, शरीर जड़ है, लेकिन उसमें जब आत्मा का प्रवेश होता है तब शरीर के सारे ऑर्गन्स काम कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम बोल पाते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा अलग हो जाती है, फिर क्या होता है? शरीर तो वही होता है। एक हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एक व्यक्ति, कोई पेशेंट बन के आया, डॉक्टर कहता है ठीक है इसको ओटी में ले लो। क्या बोलेंगे? पेशेंट को लो, पेशेंट को अंदर लो। बहुत समय कोशिश की जा रही है, केस फेल हो जाता है। डॉक्टर बाहर आके कहते हैं सॉरी। उसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ आता है, वो पूछता है डेड बॉडी को उठाओ, कहां ले जाना है? गया कौन अंदर? पेशेंट गया, एक व्यक्ति गया, लेकिन बाहर कौन आया? तब ये नहीं बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति को अभी ले लो, डेड बॉडी को ले लो। इतना फर्क पड़ गया। क्या अंतर हुआ? कि उस सोल का, उस आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, यही मृत्यु है। आत्मा शरीर में है तो समस्त अंग महसूस कर रहे हैं, सर्दी गर्मी सब कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन आत्मा के अलग होते ही जब बॉडी को चिता पर चढ़ा देते हैं, तब भी वो चूं भी नहीं करती है, क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा है कि ये गर्म है। तो फील कौन कर रहा था? वो आत्मा थी। तो मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा? शरीर मेरा है। देखिए हम क्या बोलते हैं, ये हाथ मेरा है बोलते हैं, ये आंखें मेरी है, मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा बॉडी आज थका हुआ है, मुझे पेट में दर्द है ना, मेरे कान कमजोर हो गए हैं, मेरा दिल कमजोर हो गया है, ये मेरे हैं सारी चीजें, लेकिन मैं नहीं हूं ये। मैं इससे अलग, इसका ओनर, इसका कोऑर्डिनेटर इसको चलाने वाला वो मैं हूं, और इसलिए मैं और मेरा इसी का ही संसार में खेल है। आप दिन में सबसे ज्यादा कौन से दो शब्द बोलते होंगे? कभी दिन भर की रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं हम? मैं और मेरा, लेकिन यथार्थ नहीं बोल रहे हैं। बेसिक चीज है लेकिन वो यथार्थ नहीं बोल रहे हैं। हम मैं बोलते समय ये भान में रहते हैं, मैं एक स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पतली हूं, मैं मोटी हूं, मैं गोरी हूं, मैं काला हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं इंग्लिश हूं, मैं ये हूं। तो ये सारी चीजों का भान रखते हुए हम मैं बोलते हैं, है ना? लेकिन यथार्थ सत्य क्या है? हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन के बिल्कुल आगे के हिस्से में, यहां हमारा जो ब्रेन है उसके अग्रभाग में, जहां हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये वंडरफुल दो ग्लैंड्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, हॉर्मोन्स कंट्रोल के लिए, शरीर की बैलेंस प्रक्रिया के लिए, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए जिसका वंडरफुल रोल है, वो बिल्कुल यहां पे है। और आत्मा भी वहां ही बैठकर और पूरे शरीर का संचालन भी करती है और शरीर के द्वारा अपने कर्म करती है। वो मैं हूं जो यहां पर विराजमान हूं। हिंदू धर्म में यहां पर हर धार्मिक क्रिया में या हर सौभाग्यवती स्त्री या हर शुभ कार्य में यहां पर क्या करते हैं? हम तिलक लगाते हैं। प्रश्न होना चाहिए यहां ही क्यों? कभी यहां लगाना चाहिए। फैशन तो बदलती रहती लेकिन इसका नहीं बदला। और चीजों के तो हमने बहुत सारे बदलाव किए लेकिन तिलक कहां लगाते हैं? ये सूचक है। तिलक माना टिकना, अपनी स्मृति में, अपनी वास्तविकता में टिकना, फिर कोई धार्मिक क्रिया करना। कर कौन रहा है? पूजा किसको करनी है? शांति किसको चाहिए? परमात्मा को कौन याद कर रहा है? आत्मा कर रही है। शरीर तो उसका क्या है? माध्यम है। जैसे ये माइक है, ये मुझे मिला है ताकि आप सब तक मेरी आवाज पहुंचे, तो माइक के थ्रू आवाज आ रही है, ये साधन है। लेकिन बोलने वाला कौन है? वो इससे अलग है। ठीक वैसे ये शरीर क्या है? साधन है, और मैं उसका प्रयोग करने वाली आत्मा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे शरीर एक सीप है और आत्मा उसके अंदर मोती की तरह है। सीप कितनी सस्ती होती है, सागर किनारे बहुत सारी सीप यूं ही मिल जाती है, लेकिन मोती ढूंढ के निकाले जाते हैं और बेशकीमती होते हैं। ठीक वैसे ये शरीर जो है, ये मिट्टी का पुतला है, है ना? पांच तत्वों का पुतला कहते हैं ना, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्वों का। उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी है, इसीलिए क्या बोलते हैं? मिट्टी का तन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। वैल्यू किसकी है? जो उसके अंदर आत्मा है, उसके होने से ये शरीर की वैल्यू है। वरना जैसे ही वो निकल जाता है, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कितना भी धनवान पति हो, कितना भी लाडला बच्चा हो, जैसे वो आत्मा अंदर से निकलती है, फिर उस शरीर को गले लगा के कोई नहीं जी सकता। बल्कि उस डेड बॉडी के पास अगर एक रात किसी व्यक्ति को अकेला बैठना हो, कल्पना करना, जिसके साथ आपने सालों बिताए हैं, लेकिन उस व्यक्ति के डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के पास आपको एक रात पूरी अकेले बैठना पड़े, कैन यू डू? क्यों? क्या कहेंगे? डर लगता है, क्योंकि फिर उसमें चेतनता नहीं है, वो तो केवल उसका पिंजरा है अभी। वो जो पंछी था, जो उसमें निवास कर रहा था, जो मेरा पति था, जो मेरा बेटा था, जो मेरी पत्नी थी, जो मेरे से प्यार करता था, वो तो उसके अंदर बैठा हुआ वो पंछी था, वो मोती था, वो तो निकल गया। अब उसकी सीप को हम प्यार नहीं करते, हम उसको उठाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो शरीर एक कार की तरह भी कह सकते हैं और आत्मा उसका ड्राइवर है। ड्राइवर किसी भी सीट पर बैठ के तो गाड़ी नहीं चला सकता, उसकी सीट फिक्स होती है। आत्मा भी कहीं भी शरीर में नहीं है, आत्मा का स्थान फिक्स है। यहां क्यों? जैसे ड्राइवर की सीट आगे क्यों होती है? क्योंकि वहीं पर एक्सेलरेटर है, वहीं पर ब्रेक है, सब कुछ वहां पर है ना, गियर भी वहीं से वो बदल सकता है, इसलिए वो वहां बैठेगा तभी तो कंट्रोल करेगा। तो आत्मा यहां ही क्यों? कुछ लोग लंबे समय तक नहीं मानते थे, कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य के हृदय में आत्मा होती है, हार्ट में। लेकिन मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट लाई तो हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। असली हार्ट अगर खराब हो गया है तो उसको रिमूव करके और आर्टिफिशियल हार्ट को भी डाला जा रहा है। तब फिर प्रश्न हुआ कि क्या उस आर्टिफिशियल हार्ट में आत्मा रहेगी? हार्ट में आत्मा होती तो जब वो हार्ट को रिमूव किया जाता है तो आत्मा का क्या होता? इसलिए मनुष्य के हृदय में आत्मा नहीं है, आत्मा का स्थान है मस्तक में। जैसे ड्राइवर, वैसे आत्मा यहां बैठकर ब्रेन के थ्रू समस्त इंद्रियों का कंट्रोल कर पाती है। वैसे भी आपने देखा होगा, आपने किसी के दोनों हाथ कट गए हो ऐसे व्यक्ति को देखा है? मैं भी देखा होगा, फोटो तो देखी होगी। किसी के दोनों पैर कट गए हो देखा है? देखा है ना, वो भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका सिर नहीं है और वो जीवित है? तो मस्तक में ही तो आत्मा है। जब मस्तक अलग हो जाता है तो फिर आत्मा का निवास नहीं हो सकता कहां पे, वो कंट्रोल नहीं कर सकती बॉडी को और वो डेथ मानी जाती है। इसलिए शरीर रूपी घर का मालिक आत्मा है। और ये शरीर जिसमें दो आंखें खिड़की के रूप में है, अनेक द्वार है, अनेक साधन है इसके, जिसमें रहकर हम अपने इस जीवन को चलाते हैं। तो क्लियर, हम कौन है? क्लियर सभी को? जरा एक हाथ खड़ा कर दे। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर को चलाती हूं। ये बेस है। देखिए, जैसे बच्चे को एबीसीडी में आप कितनी मेहनत करते हैं कि बेटा एक बार एबीसीडी ठीक से सीख जाए, 1 to 10 अच्छी तरह सीख जाए, है ना, ये बेस होता है ना एजुकेशन का। तो स्पिरिचुअलिटी का ये बेस है, इसको पक्का करना बहुत जरूरी है, इसलिए पूछ रहे हैं। आत्मा न जन्मती है न खत्म हो सकती, अविनाशी है। गीता में, भारत का प्रसिद्ध सनातन धर्म का पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, उसमें लिखा है ना, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा वो चीज है जिसे ना तो प्रकृति के कोई तत्व छू सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, न कोई शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता, न पानी भिगो सकता। ये गीता में लिखा हुआ है। आत्मा वो चीज है जिसको सर्दी का, गर्मी का, पानी का, अग्नि का, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। ये जो महसूसता है वो शरीर में है, आत्मा को नहीं होती। आत्मा काटी नहीं जा सकती, आत्मा बनाई नहीं जा सकती, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। इसलिए एक चीज की खुशखबरी आज अपने आप को देना, कौन सी? कि मैं कभी मरने वाली नहीं हूं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है तो खुश होगा ना। तो मृत्यु किसकी होगी? यह शरीर मेरा छूट जाएगा लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। मेरा क्या होगा? दूसरा शरीर मिलेगा, फिर से जन्म, फिर से नया कार्य, नए लोकेशन पे जाएंगे, जस्ट ट्रांसफर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अपने यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात शब्द बोला जाता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं हिंदी में खास करके, भाई फलाना व्यक्ति चल बसा, बोलते हैं चल बसा, यहां से चल दिया वहां जाके बस गया, कुछ भी नहीं बदलता है, केवल ड्रेस और एड्रेस बदलता है, हम वही के वही रहते हैं। इसके पहले भी हमारा ड्रेस और एड्रेस कुछ और था, इस जन्म में मेरा ड्रेस और एड्रेस ये है, और अगर ये शरीर ये लोकेशन छूट गया तो मेरा अगला ड्रेस और एड्रेस खाली डिफरेंट हो जाएगा, मैं तो वही रहूंगी। तो खुशी हुई कि नहीं हुई? जो स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं वो इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि उनको मृत्यु का भय नहीं रहता है। मृत्यु तो इस शरीर को आएगी, मुझे नहीं। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा शरीर का मालिक है, और पांचों ही मुख्य जो इंद्रियां है, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय, ये सारी जो इंद्रियां है इसकी वो संचालक है। मुख्य रूप से आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारा समस्त शरीर पर जो है स्किन, ये पांच मुख्य इंद्रियां है जिसके द्वारा पूरा दिन आप कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, बोल पाते हैं, खा पाते हैं, सुन पाते हैं, ये सारी इंद्रियों का आत्मा प्रयोग करती है। अब कुछ कार्य है जो हम शरीर से नहीं करते लेकिन हम करते हैं, वो हमारी सूक्ष्म इंद्रियों से करते हैं, जैसे कि सोचना, जैसे कि डिसीजन लेना, जैसे कि उदास होना, खुश होना, ये सब हम शरीर से नहीं करते हैं तो फिर किससे करते हैं? ये हमारी सूक्ष्म तीन इंद्रियां आत्मा के तीन अंग है। पहला है मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन आपको मिले हुए तीन पार्टनर है। अगर ये साथ है तभी आप जीवन को चला पाते हैं, है ना। तो मन का कार्य क्या है? मन अर्थात सोचने की शक्ति, संकल्प। मन के ऊपर तो आप जानते, पूरा साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मन शास्त्र बना हुआ है, बहुत विस्तार है मन का। विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार मन में चलते हैं, उन विचारों के आधार पे हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं। विचार ही है जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए या बोलने के लिए। आप कुछ बोलते हैं, बोलने से भी पहले आपके अंदर एक थॉट क्रिएट होता है कि ऐसा बोलूं, तो वो प्रेरणा किसकी है? मन की। उसके बाद कर्म होता है, इसलिए मन पहली शक्ति है आत्मा की, सूक्ष्म इंद्रिय। मन के विचार कैसे उत्पन्न होते? देखिए, आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे कुछ अलग सोच रहा है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, एक ही जगह बैठे हो, एक ही बात सुन रहे हो, एक ही दृश्य सामने है, लेकिन मन उनका अलग चल रहा है, आपका अलग चल रहा है, राइट? तो विचारों का आधार क्या है? किस आधार पे विचार उत्पन्न होते हैं? तो इंद्रियों का प्रभाव है ना, जिसको जो शरीर मिला, एनवायरमेंट मिला, उसके आधार पे वो सोचता है। इसी तरह मान्यताएं, कुछ हमारे मन में बिलीव बनी हुई होती है, उसके आधार पे हम सोचते हैं। एक ही दृश्य को देखते हुए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोचते हैं। अगर यहां पे कोई कंप्यूटर इंजीनियर बैठा होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कौन सी कंपनी का कंप्यूटर बेंजी यूज कर रहे हैं। अगर यहां कोई कारपेंटर बैठा होगा तो उसका ध्यान जाएगा कि सोफा कैसे बना, ये सोफे की डिजाइन अच्छी है, ये टेबल की डिजाइन ऐसी है। कोई अच्छा स्पीकर बैठा होगा तो ये सोचेगा कि बेंजी कैसे बोल रही है, अच्छा बोल रही है नहीं बोल रही है। कोई ये देखेगा कि बेंजी का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कोई ये देखेगा कि स्टेज कितना अच्छा है। तो देखिए बैठे तो सब यही है लेकिन सबके अंदर विचार अलग अलग है, तो हरेक की जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है ना, इसलिए पूर्व स्मृतियों के आधार पे भी विचार चलते हैं। किसी स्थान पर से आप निकले थे और वहां पर एक गड्ढे में आपका पांव धंस गया था, दूसरी बार आप उसी जगह से जब जा रहे होते हैं तो आप थोड़ा संभल के चलते हैं, दूसरे लोग सीधे सीधे जा रहे हैं उनको भी आप बोलते भाई थोड़ा संभल के चलना, वो बोलते क्यों, तो आप बोलते क्योंकि मैं यहां पर धंस गई थी, मेरा पैर मुड़ गया था। तो आप कैसे विचार आपको आया, वो आज तो वो रास्ता ठीक ठाक है लेकिन आपके अंदर तुरंत वो पूर्व स्मृति आती है कि हाँ ये वही जगह है जहां मुझे तकलीफ हुई थी। ऐसे ही कोई व्यक्ति सामने आता है तो आपको पूर्व स्मृति के आधार पर विचार आता है, ऐसा ही था वो, अच्छा ये वही है जिसने मुझे ये दिया था, जिसने मुझे फलानी बात सुनाई थी। तो स्मृतियों के आधार पर आप विचार करते हैं। इसी तरह क्रिएटिव माइंड भी होता है हमारा, जो हर जगह कुछ न कुछ नया करने का सोचता है, तो कल्पनाएं करता है, विचार करता है, इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है, वो हमारा क्रिएटिव माइंड कहलाता है। तो अनेक प्रकार के विचार इसके आधार पे हमारे चलते हैं। अब विचारों की भी क्वालिटी है, कहते हैं कि पूरे दिन में 24 आवर्स में 40,000 से लेकर 1,00,000 तक के थॉट्स क्रिएट होते हैं मन में। पूरे 24 घंटे में हमारे अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, 40,000 से लेकर, अगर हम कभी बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत फास्ट सोचते हैं, तो 1,00,000 तक थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट कर लेते हैं, इतना माइंड हमारा काम करता है। और मनुष्य शरीर से तो सो भी जाता है लेकिन उस वक्त भी उसका मन सोता है, वो तब भी सोच रहा होता है। और वो क्या होता है उस समय सोचने से, अनेक प्रकार के स्वप्न भी देखता है, वो भी सोच है। जो अंदर कोई ना कोई दृश्य देखे हैं या कोई मन में प्लानिंग चल रही है कल कुछ करना है, तो आपको सवेरे जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तो आपको रात को 2-3 बार ऐसा लगेगा कि ट्रेन छूट गई, मैं लेट हो गया, तो ये आपको विचार चलते हैं या स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं, दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर इतने सारे विचार चलते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कौन सी क्वालिटी के विचार मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं। विचार तो सभी कर रहे हैं लेकिन कोई सोचते सोचते विद्वान बन जाता है और कोई सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई सोचते सोचते अपराधी बन जाता है, कोई सोचते सोचते संत बन जाता है। दोनों ही सोच रहे हैं लेकिन एक सोचता है कैसे बैंक में डकैती करूं और एक सोचता है कैसे जगत का कल्याण करूं, वो भी सोच रहा है। सबके मन में विचार है लेकिन क्वालिटी ऑफ थॉट्स ये इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी के खेत में, भाई किसी के पास खेत बहुत बड़ा है लेकिन उसमें खाली घास फूस उगा हुआ है तो उसको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। किसी के पास खेत की जमीन तो थोड़ी सी है, छोटा सा बगीचा ही है लेकिन उसने उसमें केसर की खेती की और उसके अंदर से उसको 10 किलो केसर निकला केवल, लेकिन 10 किलो केसर की कीमत कितनी हो जाएगी। बगीचा तो छोटा था लेकिन क्वालिटी उसकी खेत की, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। इसी तरह से मेरे को सोचना तो है, बिना कुछ प्रयास के भी विचार तो चलते ही है लेकिन मुझे क्या करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, तब मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा हूं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति वो नहीं है जो दिखता है, व्यक्ति वो है जो वो सोचता है। देखने वाला जो रूप है हमारा वो तो दुनिया को दिखता है, लेकिन आपकी रियल आइडेंटिटी वो है कि आप सारा दिन सोचते क्या है, आपके माइंड में क्या चलता है, वो आपकी क्वालिटी है। इसलिए कहते सुंदर वही है जिसका मन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है। देखने में तो सुंदरता सबको शायद न मिली हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, देखने में बड़े सिंपल थे लेकिन विचारों में बहुत महान थे। मदर टेरेसा थी, बहुत सिंपल थी देखने में, लेकिन आज उनको महान रूप से याद किया जाता है। तो बहुत से व्यक्तित्व ऐसे हैं जो अपने विचारों से बहुत महान थे। तो हमारी सुंदरता हमारे अच्छे विचारों से है। तो पहला ही विचार की क्वालिटी है सकारात्मक। हमें चेक करना है हमें सकारात्मक विचार सारे दिन में कितनी बार कितनी समय तक चलते हैं। सकारात्मकता किसको कहते हैं? हर चीज की अच्छे पहलू को देखना, हर घटना के हर बात के अच्छे पहलू को देखना, हर व्यक्ति की अच्छी साइड को देखना। व्यक्ति के अंदर बहुत से आयाम होते हैं, लेकिन अगर मैं सकारात्मक सोचना चाहती हूं तो मेरा काम क्या है? उस व्यक्ति के बारे में जो अच्छा है वो सोचना। बुरा भी बहुत कुछ होगा, है ना, लेकिन मुझे क्या देखना? अच्छा देखना, अच्छा सोचना। तो इसको कहते सकारात्मकता। जैसे हम सवेरे सवेरे उठते हैं, प्रेयर करते, भगवान को हाथ जोड़ते, क्या बोलते? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु सबको शांति मिले, कोई दुखी ना हो। सवेरे सवेरे अच्छी प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव भाव है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सारा दिन ऐसे भाव रहते हैं? सारा दिन क्या होता है? कोई सामने आया, अगर उसने कुछ उल्टा बोला, गलत व्यवहार किया, फिर हमारे मन में आता है सर्वे भवन्तु सुखिना, फिर क्या आता है? इसने जैसा मेरे साथ किया है, इसने जैसा मुझे दुख दिया है, काश डॉट 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 डॉट, मैं नहीं बोलती हूं, विचार आते हैं ना, तुरंत हमारा फ्लक्चुएट हो जाता है विचार। तो हमेशा सकारात्मक विचार रहे तो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाए, क्योंकि सकारात्मक विचार मन को सशक्त बनाते हैं। तभी कहते प्रार्थना बहुत शक्ति देती है, क्योंकि वो सकारात्मक होती है। तो सदैव मन में सकारात्मक सोचने वाला हाई क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का सोल माना जाएगा। सेकेंड क्वालिटी ऑफ सोल नकारात्मक, नेगेटिव। किसी ने बहुत सुंदर एक बात बताई थी कि दुनिया कैसी है ना, खिड़की से बाहर देखा तो दो दृश्य थे, नीचे कमल खिला हुआ था और आसमान में चांद उगा हुआ था। किसी ने कीचड़ में भी कमल को देखा, किसी ने चांद में भी दाग देखा। होता है, ऑलवेज हमारा ध्यान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी को देखने लगता है। किसी के यहां गए, किसी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी होता है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? क्या अच्छा नहीं था, है ना? जो अच्छा था वो तो ठीक है, लेकिन हम कहते वो सब ठीक था, दाल थोड़ी पतली खिलाई, बिस्तर जो सोने के लिए दिए थे ना वो इतने साफ नहीं थे, कमरा थोड़ा छोटा था, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेंगे और उसको हम 10 जगह बोल देंगे। सब कुछ अच्छा था लेकिन मेरा ध्यान नकारात्मक होने से किस में गया? नकारात्मक बातों में। तो ये सोचना कि मैं जहां पर भी जो भी सारा दिन देखती हूं, जिन लोगों से मिलती हूं, मैं उसमें से क्या देख पाती हूं? चांद में दाग देखती हूं या कीचड़ में खिले हुए कमल को? नकारात्मक विचार हमारी शक्तियों को बहुत तेजी से खत्म करते हैं। एक नकारात्मक विचार भी जैसे लकड़ी को दीमक खा जाता है, वैसे इन आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता है। इसीलिए पॉजिटिविटी को आध्यात्मिकता से हमें जीवन में बढ़ाना चाहिए। इसी तरह आवश्यक विचार, कर्म के विचार सारा दिन चलते, इसके बाद वो करना है, इसके बाद वो करना है, यहां से उठ के नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके बुकिंग कराना है, रिटर्न रिजर्वेशन करना है, फिर वापस जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है ना, इसको बोलेंगे आवश्यक, जरूरी विचार। इसमें भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आत्मा की जाती रहती है। जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी एनर्जी जाती है। कुछ लोगों को काम थोड़ा होता है लेकिन सोचते बहुत ज्यादा है। दो मेहमान घर में आने वाले होंगे लेकिन दो घंटे तक चिंतन चलेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। अब सिंपली दो लोग आपके घर में आ रहे हैं, आपको खाना खिलाना है बस। लेकिन भारी हो जाता है कोई कोई, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मुसीबत आ गई है ना, क्योंकि उनको अधिक सोचने की आदत होती है। और आज के समय में ओवर थिंकिंग करना ये कॉमन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओवर थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। आवश्यक विचार कीजिए कि मुझे ये करना है, ठीक है, मेरे पास अनुभव है, नहीं तो मैं किसी का साथ लूंगी और ऐसे ऐसे करूंगी, स्टॉप, अभी नेक्स्ट सोचो। एक ही बात को लंबे समय तक मत सोचा कीजिए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसी तरह से व्यर्थ विचार, जो कहा ओवर थिंकिंग या फालतू विचार। फालतू विचार कैसे होते हैं? पास्ट की लाइफ के विचार। कईयों के जीवन में जो बातें बीत चुकी लेकिन वो बहुत बुरे अनुभव थे, तो वो कई बार फिर भी याद करते हैं, क्या मेरी जीवन हो गई थी, बहुत मेरा तो नुकसान हो गया, बहुत मेरे साथ बुरा हुआ, बहुत मुझे तकलीफ दी गई, अभी क्यों याद करते हैं आप, आज को जियो, आज में जियो। इसलिए कहते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता है क्योंकि वो पास्ट की बातें याद करता है, और जवान व्यक्ति कई बार इसलिए खुश नहीं होता है क्योंकि वो फ्यूचर के बहुत सपने बनाता है, कैसे पूरे होंगे उसकी चिंता में रहता है, लेकिन बच्चा हमेशा खुश रहता है क्योंकि बच्चा वर्तमान में रहता है, उसके सामने जो हो रहा है बस वो उसका आनंद लेता है। तितली आई, तितली का आनंद लिया, फूल मिला, फूल का आनंद लिया, खाने को मिला, खाने का आनंद लिया, किसी ने अच्छे से उसको बुलाया, उसका आनंद लिया, बच्चा हमेशा खुश रहता है। और आप सभी ने देखा होगा, एक सर्वे भी हुआ है कि एक साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो पूरे दिन में 250 से 300 बार मुस्कुराते हैं। एक दिन में 250-300 बार मुस्कुराते हैं एक साल तक के बच्चे। यानी हम सभी भी जब एक साल तक के थे तो 250-300 बार मुस्कुराते थे, और अभी क्या हो रहा है? कई तो कहते बहन जी दिन बीत गए मुस्कुराए हुए, पूरे दिन में कितनी बार तो इतने गिनती में आ जाएगा, इतनी बार भी मुस्कुरा ले। कई लोग तो इतना भारी रहते हैं, अरे भाई मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मुस्कुराओ तो, कुछ किसी को मत दो लेकिन कोई सामने आए तो प्यारी सी स्माइल तो दे दो, खुश रहो। लेकिन व्यर्थ विचार व्यक्ति के अंदर पास्ट की बातों के आते हैं, इसलिए वो खुश नहीं रहते। फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं तो खुश नहीं रहते। आज का दिन परमात्मा ने मुझे दिया है जीने के लिए, मुझे खुश रहना है। आज मेरी सांसें चल रही है, मुझे खुश रहना है। आज मैं जिंदा हूं इसलिए मुझे खुश रहना है। आज मैं जो देख रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे खुश रहना है। बैंक बैलेंस नहीं है सो व्हाट, जो जितना बैंक बैलेंस है वो छोड़ के जाना ही एक दिन। आपका काम तो रोज जितना है उतना ही चलने वाला है। समाज में मेरा नाम कितना बड़ा है नहीं है इसमें ना पढ़िए, आपकी कितनी पहचान है मत पढ़िए उसमें, लेकिन वर्तमान को देखकर खुश रहिए। तो खुशी क्या करती है, अच्छे विचार में आती है और वो विचार हमें शक्ति देते हैं। खुश रहने से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपके बॉडी पर भी अच्छा असर आता है। इसलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते हैं, साथ साथ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथ साथ, चिंता बिल्कुल मत करना, आप ठीक हो जाएंगे, आप खुश रहो, बस दवाई खाते रहो, बोलते हैं ना। तो खुश रहना भी अपने आप में क्या है, मेडिसिन है। जब आत्मा के अंदर खुशी का विचार उत्पन्न होता है, शुभ विचार उत्पन्न होता है, तो उनके सारे जो ग्लैंड्स है उसके द्वारा पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में वो पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी को भी स्वस्थ बनाते हैं। तो इसलिए हमें विचारों के आधार पे ही स्वस्थ रहना। और वैसे भी आप जब फोटो खिंचाते हैं तो भी फोटो खींचने वाला क्या कहता है, क्या कहता है, स्माइल प्लीज, है ना। फोटो भी कब अच्छी आती है, जब आप मुस्कुराते हैं। तो एक पल मुस्कुराने से अगर आपकी तस्वीर अच्छी हो जाती है तो सदा मुस्कुराएंगे तो आपकी तकदीर अच्छी बन जाएगी। तो यहां से मुस्कुराने का वरदान लेकर आपको जाना है। वो तभी होगा जब आत्मा को आप पॉजिटिव विचारों से सशक्त बनाएंगे। अब दूसरा कार्य है बुद्धि का। पहले हमने मन का कार्य देखा, दूसरा ऑर्गन है आत्मा का, बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक तराजू है। जैसे आपके पास दो चीजें हैं, आप देखना चाहते हैं कि किसका वेट ज्यादा है, तो आप तराजू में दोनों को एक साथ रख के देख लेते हैं कि ये ज्यादा हैवी है कि ये, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने जितने भी मन में विचार आते हैं, कुछ कार्य करने की योजनाएं आती है, तो आपके पास जो बुद्धि है, आत्मा उस बुद्धि के द्वारा डिसाइड करती है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये डिसाइड करना ये बुद्धि का काम है, चूज करना ये बुद्धि का काम है। तो ये सारा बताया है, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है। उसका एक कार्य तो है निर्णय करना, फिर है विश्लेषण करना, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, फिर पसंद करना, चुनना कि क्या मैं अभी करूं क्या मैं बाद में करूं, करूं या नहीं करूं, चुनना, गेस करना, अनुमान लगाना, ये भी बुद्धि का काम है कि अगर मैंने ये किया तो क्या हो सकता है, आज मैंने ऐसा बोला कल क्या हो सकता है। तो बुद्धि क्या करती है, बताती है कि आज तुमने इसको कड़वा बोला तो कल क्या होगा, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये बुद्धि ने सही समझा तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना है। तो बुद्धि हमें समझाती भी है, फिर बुद्धि पहचानती है, जो पूर्व की हमारे अंदर मेमोरी होती है उसके आधार पे बुद्धि पहचानती है कि हाँ ये वही चीज है जो मैंने उस दिन खाई थी और मेरी तबीयत खराब हुई थी, ये मुझे नहीं खानी है। कोई व्यक्ति सामने आता है तो बुद्धि ही पहचानती है ये वही व्यक्ति है जो उस फंक्शन में हमको मिले थे, ये भी कार्य बुद्धि का है। बुद्धि डिफरेंस भी समझती है कि ये दोनों चीज के बीच में क्या अंतर है, तो उससे हम सही दिशा में आगे जा सकते हैं। तो बुद्धि का काम है समझना। देखिए हम बच्चों को कभी कभी कहते हैं, आप सब बोलते होंगे कि सोच समझ के काम करो, बोलते हैं? तो सोचना समझना और करना तीन स्टेप है, ठीक है। तो सोचना काम मन का है, समझना काम बुद्धि का है, उसके बाद कर्म होता है। इसलिए बुद्धि जितनी अच्छी होगी तो समझ जाएगी, कोई गलत विचार आया भी लेकिन बुद्धि उसको स्टॉप कर देगी। इसीलिए जब कोई बार बार गलत काम करता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि इसके अंदर मन नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है जो ये बार बार ऐसा काम करता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है ना। तो बुद्धि का कार्य है समझना। समझने के बाद हम कर्म करते हैं। तो तीसरा है कर्म, अथवा कर्म के आधार पे क्या होता है, कर्म तो थोड़ी देर होता है, लेकिन कर्म समाप्त होने के बाद भी आत्मा के अंदर कर्म की रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो हमेशा रहती है। इसलिए कहावत है कि सब चीजों से आप बच सकते हैं लेकिन अपने कर्मों से बच नहीं सकते। कैसे नहीं बच सकते, कर्म तो पूरे हो जाते हैं, बोल दिया बोलना था, वो करना था वो कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर हो जाती है, अच्छे या बुरे सभी कर्मों की, और उसी रिकॉर्डिंग को कहते हैं संस्कार। घर में जब बहू लानी होती है तो क्या कहती है माताएं, कैसी बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, है ना। किसी के घर में जाते हैं तो देखते हैं इनके बच्चों का संस्कार कैसा है। तो ये संस्कार क्या है उसको भी हम ठीक से समझ ले, आत्मा का ही एक हिस्सा है संस्कार, यानी आदत, है ना, जो जीवन में दिखाई देती। अब संस्कार कहां से आते हैं, कई बार माता पिता के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल उल्टे तरीके के काम करते हैं। लोग कहते ये इनका बच्चा है, इनके मां बाप कैसे और ये कैसा, ऐसा कैसे हो गया। कारण क्या होता है, वो कौन से संस्कार होते हैं जो बच्चा प्रयोग कर रहा है, उसका प्रकट हो रहा है, पूर्व जन्म का। आत्मा क्योंकि आई है ना, जन्म भले यहां लिया लेकिन आया कौन, आत्मा आई, वो क्या लेकर आई, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के साथ है। तो संस्कार जब लेकर आती है आत्मा तो पूर्व जन्म के संस्कार प्रकट होते हैं। तो एक तो होते पूर्व जन्म के जो हमारे में दिखाई देते हैं, दूसरे होते हैं जो माता पिता के जैसे संस्कार बच्चों में आते हैं, अनुवांशिक भी कह सकते हैं, जिसको हेरिडिटरी भी कहते हैं, अनुवांशिक। हमारे अंदर ऑटोमेटिक दिखता है कि भाई ये इसका फेस इसकी माँ जैसा है, ये बिल्कुल इसके मम्मी जैसी बोलती है, इसके पापा जैसा ही काम दिखता है, इसके जैसी हाइट है, इसके जैसी बॉडी है, इसके जैसी आवाज है। ये संस्कारों के कारण माता पिता के बच्चों में आते हैं। फिर संघ के आधार पे, जैसी कंपनी में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके जैसे भी धीरे धीरे हम बन जाते हैं, है ना, जैसा संघ वैसा रंग, ऐसे कहते हैं ना। तो रंग बॉडी का नहीं बदलता है किसी के साथ रहने से, लेकिन कौन सा रंग बदलता है, हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, बोलने का तरीका वैसा हो जाता है जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं। तो संघ के आधार पे, आजकल तो बच्चों की बहुत शिकायत माताएं करती है कि हमारे बच्चे पहले तो बहुत अच्छे थे, बाहर पढ़ने गए, ऐसा संघ मिला कि वो बिल्कुल हमारे घर के संस्कार भूल गए, उनका तो आदतें बिगड़ गई, उनको पता नहीं गलत आदतें पड़ गई, क्योंकि वैसे ही संग में वो रहे तो बहुत इजीली वो वैसे बन गए, उनको कोई डर या संकोच नहीं होता है, आसपास सभी लोग कर रहे हैं वैसा इंसान कर लेता है। तो संग, फिर वर्तमान में हम जो जो कर्म करते जाते हैं वो भी हमारे संस्कार बनते जाते हैं। जैसे हम कुछ नया सीखते हैं, पहले हमको नहीं आता है लेकिन जब हम सीखते हैं फिर हमारे वो आदत हो जाती है। पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपकी साइकिल कैसी चली थी, याद होगा ना सबको, कितनी बार गिर गए थे, चोट अभी भी होगी कहीं ना कहीं कि भाई ये साइकिल वाली चोट है, अभी तक याद होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप चलाना सीख जाते हैं तो आप बातें करते, मस्ती करते, इधर देखते उधर देखते, लेकिन आपकी साइकिल बिल्कुल सीधी चलती है, क्योंकि क्या हो गया आपको, कर्म करते करते प्रैक्टिस हो गई, संस्कार बन गया। ऐसे हर कार्य के लिए होता है, पहली बार रोटी बनाई होगी तो कैसी बनी होगी, है ना, और अब रोटी कैसे बनती है, हर चीज का ऐसा है। तो ये कर्म से संस्कार बनते हैं, और एक हमारे ओरिजिनल अविनाशी संस्कार भी आत्मा के होते हैं। जब पहली बार आत्मा संसार में आती है पहले जन्म में आती है तब वो कैसी होती है? बिल्कुल नील तो नहीं होती, आत्मा तो संस्कार सहित ही आती है धरती पर भी। तो पहली बार जब आत्मा संसार में आई तो उसके मूल संस्कार लेकर आती है। तो वो मूल संस्कार कौन से होते हैं इस पर भी हम विचार करेंगे आगे। संस्कार कहाँ प्रकट होते हैं? संस्कार हमारी स्मृतियों में एक तो दिखाई देते हैं। आपको मन में क्या सदा याद रहता है? कोई कोई बिना कारण हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसे अनुभव उस आत्मा ने किए हैं कि उसको हमेशा डर लगता है। कईयों को पानी से डर लगता है, कईयों को झाड़ पर चढ़ने से डर लगता है, लगता है ना? कईयों को अग्नि से डर लगता है। ये कारण होता है कि पिछले जन्मों में इस तरह की स्मृतियां उनके अंदर आत्मा में स्टोर है, इसलिए वो अभी भी डरता है। कईयों को स्टेज पर बोलने में फियर होता है, कोई बहुत इजीली बोल लेता है। कईयों को पब्लिक के साथ मिक्स होने में भी डर लगता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि कुछ पूर्व में ऐसे अनुभव उनके हुए हैं कि वो सबके साथ में घुलमिल नहीं पाते हैं। कोई ज्यादा बोलता है, आवाज से बोलता है, कोई बहुत धीमा बोलता है, कितनी बार भी उनको कहो उनकी बड़ी आवाज निकलेगी ही नहीं, है ना? ये सारे स्मृतियों के आधार पे होते हैं। फिर आदतें, आदतों में संस्कार दिखाई देता है। फिर वृत्ति, कईयों की हर चीज में भय की वृत्ति होती है, लालच की वृत्ति होती है, मांगने की वृत्ति होती है, आलस की वृत्ति होती है, अलग अलग प्रकार की वृत्ति होती है। कोई बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, हमेशा हिम्मत का काम करते हैं, कोई हमेशा हिम्मतहीन रहता है, कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं करेगा, ये सब संस्कार है। कईयों में अच्छी विशेषताएं दिखाई देती है। आपने सुना होगा एक 15 साल के बच्चे ने ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स को क्लास कराई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेसन लिया। एक 3 साल का बच्चा गाड़ी चला लेता है, एक 5 साल का बच्चा बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक बजाता है। कैसे कैसे, क्या कहेंगे? वो विशेषता उसके अंदर पहले से संस्कारों में स्टोर में थी, तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है, वो पूर्व जन्मों की संस्कारों के कारण। और स्वभाव, हर एक व्यक्ति का एक दूसरे का स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, एटलीस्ट कोई ट्विन्स भी पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो स्वभाव का भी आधार क्या है कि पिछले जन्मों में आपके अंदर किस तरह के कर्म आपने किए थे, किस तरह के अनुभव आपने किए थे, किस तरह के आपके साथ घटनाएं हुई थी, उसके आधार पे आपका स्वभाव होता है। इसीलिए आत्मा को जानने से हमें शिकायत नहीं रहती। ज्यादातर घर परिवारों में क्या होता है, एक दूसरे के साथ जब हम रहते हैं तो हमें बहुत शिकायत होती है ना, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मेरी फ्रेंड मुझे समझती क्यों नहीं है, ये इतना आलसी क्यों है, ये इतना लालची क्यों है, ये इतना गुस्सा क्यों करता है। लेकिन जब हम इस तरह की कोई भी चीज देखें तो अब हमें क्या समझना है, क्या समझना है कि वो जो आत्मा है इस जन्म में, भले वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, लेकिन वो आत्मा है, वो पिछले जन्म में इस तरह के अनुभव करके आई है, इसलिए इस जन्म में वो इस तरह का व्यवहार कर रही है। ये मत सोचो कि मेरा बेटा होते हुए भी ऐसा, मैं इतना इनके लिए करती हूँ फिर भी ये मेरे लिए ऐसा करते हैं। परेशान नहीं होना, समझ जाना कि आपकी तरफ से कोई खोट नहीं है, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के अंदर जो पिछला बैलेंस है ना कर्मों का, वो अलग टाइप का है, इसलिए वो आपकी बातों के अनुसार वो नहीं चल पा रहे। आपके प्यार के बावजूद भी वो आपको प्यार नहीं करते, आप उनकी केयर करते हैं लेकिन वो आपकी केयर नहीं करते। आजकल ये तो घरों में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, हमने बच्चों के लिए कितना कुछ किया, बच्चे बड़े हो गए तो हमारी कैरी नहीं करते, है ना, तो उनके अंदर संस्कार नहीं होते। तो इसलिए हमें सबको आत्मा के रूप में देखना है और आत्मा के अविनाशी मूल संस्कार या मूल गुण कौन से हैं, ओरिजिनली आत्मा क्या है, कैसी थी। भगवान ने जब हमें बना के भेजा तो कैसा बना के भेजा था। आज तो हम सबको देखते हैं कि सब में कोई ना कोई कमी नजर आती है, आती है ना, कोई अशांत है, कोई थोड़ा कमजोर है, कोई खुश नहीं रहता है, कोई उदास रहता है, कोई गुस्सा करता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई आलसी है, अलग प्रकार के सबके अंदर स्वभाव दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान ने जब ओरिजिनल हमको पहली बार बना के भेजा था संसार में, तब हमारा रूप स्वरूप कौन सा था, मैं वास्तव में कैसी थी। तो कहते हैं कि भगवान ने हर आत्मा को अपने जैसा ही बना के भेजा था। परमात्मा को कहते हैं ना, तू दया का सागर है, शांति का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का भंडार है, बोलते हैं ना, भगवान की महिमा गाते हो ना सभी, तो बिल्कुल वैसा ही परमात्मा ने हमें भी बनाया था। आत्मा के ये सात मूल गुण आत्मा में थे, जब ही आत्मा को सतो प्रधान कहा जाता था। पहला गुण है आत्मा का ज्ञान। ज्ञान हमेशा आत्मा को जानने की जिज्ञासा रहती है। आपने देखा होगा बच्चा जन्म के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो बार बार अनेक बातों का सवाल करता है, प्रश्न पूछता है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मम्मी, ये क्या है मम्मी, ये क्या है, पूछता ही रहता है। क्यों? आत्मा का मूल गुण है ज्ञान, उसको ज्ञान चाहिए। कौन सी चीज हिल रही है तो क्यों हिल रही है, यहां पड़ी है तो क्यों है, ऐसी क्यों है, क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का संस्कार है, मूल गुण है। फिर ज्ञान के आधार पे ही हमें मिलता है आनंद, तो आनंद भी आत्मा का मूल गुण है। इसलिए हम सबको आनंद मिलता है तो वो क्षण बहुत याद रहते हैं, जब वहां गए थे बहुत अच्छा लगा था, वो लाइफ टाइम याद रहता है, क्योंकि आनंद हमारा मूल गुण है। पवित्रता, आपको कोई व्यवहार करता है उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है, झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत स्पष्ट व्यवहार करता है, बहुत शुद्ध आपके साथ बात करता है तो आपको अच्छा लगता है कि देखो इसने जो बात जैसी थी ना वैसी मेरे को बताई, इसने कुछ तीन पांच नहीं किया, वो प्योरिटी है। कोई स्थान पर आप जाते हैं वहां बहुत स्वच्छता होती है तो वो भी आपको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि पवित्रता आत्मा का मूल गुण है। इसी तरह प्रेम, हमें क्या अच्छा लगता है, जब हमें प्रेम मिलता है, कोई सिर्फ पूछ लेता है ना कैसे हो, तबीयत ठीक है, तो भी हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये मूल गुण है प्रेम। प्रेम के अंदर ही केयर होती है, प्रेम के अंदर ही लगाव होता है, तो ये मेरा मूल गुण है। सुख, शांति और शक्ति, ये सारी चीजों का जीवन में जब अनुभव होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, राइट। तो अच्छा कौन सा फील होता है, जो मेरा मूल गुण होता है। जैसे आपका अपना देश, आपका अपना गांव, आपका अपना घर हमेशा आपको सबसे अच्छा लगता है, लगता है ना, होम स्वीट होम। सारी दुनिया घूम के आओ, सबसे अच्छा आराम कहां मिलता है, कहां मिलता है, फाइव स्टार होटल में ज्यादा आराम मिलता है कि घर में, घर में मिलता है ना। जो अपनी चीज है ना वहां हम कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट मेरा अपना बनाया हुआ होता है। तो आत्मा को भी सबसे अच्छा कब लगता है, जब उसको ये सात गुणों का अनुभव होता है, जहां प्यार मिलता है, जहां आनंद मिलता है, जहां खुशी मिलती है, जहां स्पष्ट ज्ञान मिलता है, कोई जानकारी अच्छी मिलती है, ये सारी चीजें आत्मा को अच्छा फील कराती है, क्योंकि ये मेरा मूल स्वभाव है। तो वैसे भी कहते हैं कि एक अणु का भी विघटन करते हैं तो उसमें परमाणु, और परमाणु का भी विघटन करते हैं तो तीन तत्व मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो भी गतिमान होते हैं। और जो ये इसकी जो गति होती है वो कहां की तरफ होती है, कि जहां वो उसकी मूल स्थिति होती है उस तरफ ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये 7 गुण है और आत्मा भी हमेशा किसकी तरफ दौड़ रही है। देखो, कहने को तो लगता है कि लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, कहते हैं ना कि सारी दुनिया कहां दौड़ रही है भाई, एक तो पैसे के पीछे दौड़ रही है, लेकिन किसी को भी पूछो वो पैसा खाता तो नहीं है। पैसा भी क्यों चाहिए, क्या बोलेंगे बताओ बताओ बताओ, पैसा भी इंसान को क्यों चाहिए? सब साधनों के लिए, खाने पीने के लिए। अच्छा, साधन और खाना पीना भी क्यों चाहिए? सुख के लिए, शांति के लिए, आराम के लिए। तो अंत में तो वही निकला ना कि पैसा भी किसके लिए ढूंढ रहा है, वो शांति के लिए। अच्छा, कोई कहता मेरे को फेमस होना है, सब जगह मेरा नाम होना चाहिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे को सब पहचाने, मेरा न्यूज़पेपर में फोटो आए, मेरा मैगजीन में फोटो आए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। अच्छा, ये भी किस लिए बनना चाहते हो? इसे क्या मिलेगा? तो बोलेंगे लोग हमारी वाह वाह करेंगे। अच्छा, वाह वाह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। आ गए ना मूल गुण। तो अंततः हमारा अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट चॉइस, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हम शक्तिशाली रहना चाहते हैं, हम कमजोर नहीं साबित होना चाहते हैं। तो यही मूल आत्मा के गुण है। और कल के लेसन में आप इसी टाइम सुनेंगे कि इन 7 गुणों को हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज तो आत्मा में ये 7 गुण नहीं दिखाई दे रहे है, पर कम मात्रा में है। कभी कभी हम शांत होते हैं लेकिन सारा दिन नहीं होते हैं। कभी तो हम बहुत प्रेम का अनुभव करते हैं और कभी हमको लगता है कि नहीं, हमारे साथ कोई प्रेम का व्यवहार नहीं करता है, है ना? हमें जितना मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें लोग प्रेम नहीं करते हैं। तो अभी तो हमारे जीवन में इन चीजों की कमी है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या हो कि मैं आत्मा इन गुणों से भरपूर हो जाऊं, सतोगुणी, 7 गुण धारण कर लूं। ये लक्ष्य बनाना है आज सभी को। अभी हमको इसके लिए स्वयं को आत्मा समझना है। जब हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा के गुण प्रकट होंगे। जब शरीर समझेंगे तो क्या याद रहेगा? मैं इतनी सुंदर नहीं हूं, मैं तो अभी इतनी जवान नहीं रही, बूढ़ी हो गई, अब तो मेरे से काम नहीं होता है, मैं तो इतनी धनवान नहीं हूं, ये सब याद रहेगा। लेकिन आत्मा, आत्मा की स्मृति पक्की करनी है। ना मैं जवान हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं पतली हूं, ना मैं मोटी हूं, ना मैं काली हूं, ना मैं गोरी हूं, मैं आत्मा हूं। ये याद रखना है। कैसे कैसे याद रखेंगे? भोजन बनाते समय मैं आत्मा हाथों से भोजन बना रही हूं, मैं आत्मा किसी से बात कर रही हूं तो ये भी आत्मा है, मैं इस आत्मा के साथ बात कर रही हूं, कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा हूं हाथों से कार्य कर रही हूं। सोने जा रहे हैं तो क्या सोचेंगे? मैं आत्मा, जैसे रात को ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में डालता है और खुद सो जाता है, ऐसे ये मेरी गाड़ी है, सारा दिन मैंने चलाई, अब इसको गैरेज में डालो, अब मैं सो जाऊं, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊं, अब मुझे इस गाड़ी को भी चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रिलैक्स होके सो जाओ। तो ये प्रैक्टिस हम सबको करनी है, है ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम जीवन में परफेक्टली शांति का, सुख का अनुभव आत्मा समझने से कर पाएंगे। इसलिए आत्मस्मृति रखे। देह की स्मृति को आत्मिक स्मृति में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देह की स्मृति होती है तो बहुत तुलना होती है, हम कंपेयर करते हैं कि ये लंबा है, ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिखता है। तो देह में ये सब तुलनात्मक वृत्ति होती, कंपेरेटिव हमारा पैराडाइम होता है। लेकिन आत्मा को हम जब देखेंगे तो कैसा सोचेंगे? जो जैसा है वैसा है, उसे क्या फर्क पड़ता है। एक बार एक बच्चा था, वो गुब्बारा लेने के लिए खड़ा था, तो उसने एक दूसरे बच्चे को पहले देखा कि उसने काले रंग का गुब्बारा लिया और वो गुब्बारा बहुत ऊपर तक गया। तो उसने अपने पापा को बोला, मुझे भी काले रंग का गुब्बारा चाहिए। बोले क्यों? बोले वो ऊपर जाता है। हकीकत क्या है? काले के बदले अगर सफेद रंग का गुब्बारा हो तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? वो तो बच्चा था, वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हम तो समझते हैं ना। गुब्बारा काला या गोरा होने से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर भरी हुई गैस के आधार पे ऊपर जाता है। व्यक्ति भी काला या गोरा होने से आगे नहीं बढ़ता है, उसके अंदर क्या इंडिग्रेंट है उसके आधार पे ऊपर जाता है। तो हमें किसी को भी कैसे देखना है कि उसके अंदर क्या है। हर एक को एक्सेप्ट करो, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। इसी तरह विभाजन की वृत्ति देह में होती है, टुकड़े होते हैं, देह भान से हम अलग होते हैं, लेकिन आत्मभान से एकता आती है, क्योंकि सभी समान है और वहां सभी अलग अलग लगते हैं। इसी तरह देह के स्मृति में रहते हैं तो इच्छाओं के अधीन रहते हैं, क्योंकि शरीर को तो बहुत कुछ चाहिए। किसी की ड्रेस देखेंगे तो लगेगा ऐसी ड्रेस मुझे भी चाहिए, किसी की हेयर स्टाइल देखेंगे तो ऐसी हेयर स्टाइल मुझे भी बनानी है, किसी का चश्मा मुझे भी ऐसा चश्मा, किसी का घर देखा मुझे भी ऐसा घर बनाना है। तो देह में क्या हो जाता है, इच्छाएं बहुत पैदा होती है जब हम शरीर भान में चलते हैं, लेकिन आत्मा कर्म इंद्रियों का मालिक है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास क्या है कितना नहीं है। उससे वो परेशान कभी नहीं होता है, वो सदा खुश रहता है, चाहे उसके पास जितना भी है जो भी है। तो इच्छाओं के अधीन नहीं, लेकिन मालिक बन के चलना है। और देह की स्मृति में क्या रहता है, मृत्यु का भय रहता है, लेकिन आत्मिक स्मृति रहेगी तो मैं आत्मा हूं, तो क्या बताया, हम कभी भी मरते नहीं है। क्या मरता है? शरीर मरता है, मैं सदा रहूंगी, सिर्फ मेरा ड्रेस बदल जाएगा, मेरा एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन मैं तो रहूंगी, ये स्मृति रहेगी। इसलिए बहुत फायदे हैं कि हम आत्मिक स्मृति में रहें। तो चलिए, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की जानकारी तो हमने ली, अब 3 मिनट के लिए हम आत्मिक स्वरूप में बैठने का, आत्मिक चिंतन करने का अभ्यास करेंगे। सॉरी टू से, पर एक बार सब खड़े हो जाइए, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी देर, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले बॉडी को, यस, थोड़ा इधर उधर मुड़ लें, यस, अपने पास वाले से जरा हाथ मिला लें, प्यार से जरा देखें, उनको बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, यस, ओके, चलिए बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथों को जोड़ दें, चाहे ऐसे गोद में रख लें। जमीन पे हम बैठते हैं तो आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। यहाँ हम चेयर पर बैठे हैं तो सीधे बैठे, दोनों पांव जमीन से जड़े हो, और एक अच्छी योग अवस्था में, राजयोग की प्रथम स्थिति है स्वयं को देखना, स्वयं को महसूस करना, स्वयं को अनुभव करना। ये स्क्रीन को समेट दीजिए तो ज्योति बिंदु को देख सकेंगे। राजयोग में हम आंखें बंद नहीं करते, सहज रूप से आंखें बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आंखें खुली रहती है राजयोग में, ताकि हम थोड़े अलर्ट भी रहते हैं और दृश्य जो हमारे सामने हमें देखना है वो एक ज्योति का बिंदु, लाइट आपके सामने चमक रही है, आपको उस ज्योति बिंदु को देखते हुए मेडिटेशन करना है, इसलिए आंखें खुली हो, और हम कुछ विचार आपको यहाँ से देते जाएंगे, कमेंट्री देंगे। आपको बोलना नहीं है, सुनते हुए महसूस करना है जैसे वो आप सोच रहे हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि हम योग की यात्रा कैसे आरंभ कर सकते हैं। ये आरंभ करने के लिए एक अभ्यास है। तो लाइट म्यूजिक चलता रहेगा, म्यूजिक पे भी ध्यान नहीं है हमारा। लाल लाइट हम इसलिए करते हैं, एक वातावरण बदलता है, दूसरा मन की ट्रैफिक को रेड लाइट इशारा देती है। जैसे रोड पर ट्रैफिक होता है तो रेड लाइट क्या कहती है, स्टॉप। तो मन को भी ये रेड लाइट क्या कहती है, कुछ देर के लिए मुझे बाकी सारे संकल्पों से, विचारों से फ्री होकर एक अच्छा अनुभव अभ्यास करना है। ऐसे अपने आप को तैयार करें। और मैं जो थॉट्स देती हूं केवल मन में रिपीट करना है। तो चले एक आंतरिक जगत की यात्रा पर। सबसे पहले अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं इस देह में मस्तक के मध्य भ्रुकुटी के आसन पर दो आंखों के बीच में एक चमकती हुई मणि हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। शांति के इन क्षणों में मुझे खुद को देखने का, खुद से बात करने का अवसर मिला है। आज तक अनेक प्रकार की भाग दौड़ में मेरी जिंदगी कहां कहां पर मुझे ले गई, जो जो भी जीवन के अनेकों खट्टे मीठे अनुभव मैंने किए, आज मुझे शांति की शक्ति को प्राप्त करने का चांस मिला है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। देह से भिन्न इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं हूं। मैं पवित्र हूं। मेरा मूल गुण शांति, प्रेम, ज्ञान, सुख, आनंद, पवित्रता और शक्ति है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अविनाशी हूं मैं। शरीर बदलता रहता है, मैं सदैव अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि पर देह रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने आई हूं। श्रेष्ठ संकल्पों से, सही वक्त पर सही बुद्धि के निर्णय से मुझे एक एक कर्म ध्यान पूर्वक करना है। कर्म ही मेरा भाग्य बनाता है। मुझे हर एक संपर्क में आने वाले को भी आत्मिक रूप में देखना है। संबंध चाहे कोई भी हो, इस संसार में जो भी आया है वो सभी आत्माएं हैं। अपने मूल धाम परम धाम से इस सृष्टि पर आती हूं। अनेकों जन्म लेती हूं। फिर मुझे वापस भी उस घर में अपना रोल समाप्त करके जाना है। न कुछ मेरे साथ आया, न कुछ भी मैं साथ लेकर जाऊंगी। केवल मेरे श्रेष्ठ संस्कार, मेरे श्रेष्ठ कर्मों का खाता, मेरे साथ रहेगा। तो मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में शांत रहकर पवित्र भाव से प्रेम पूर्वक अपने सारे कार्य करने हैं, मुझ में अनंत शक्तियां हैं, मैं जो चाहूं कर सकती हूं, मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूं, किसी भी घटना से मुझे विचलित नहीं होना है, सदा प्रसन्न रहना है, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए सभी को मुझे स्वीकार करना है, जो जैसा भी है वो उस आत्मा का पार्ट है, मुझे मेरा पार्ट अच्छी तरह से प्ले करना है। परमात्मा मेरे मार्गदर्शक है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसी स्थिति में मुझे सदैव रहना है। ये अपने आप से वायदा करें, आ जाएं अपनी मूल स्थिति में। ओम।